ओम शांति। सभी एक हाथ हिला करके आदरणीय भाई जी का स्वागत करेंगे। बाबा के अनन्य रतन, हम सबके अति प्यारे भाई, बड़े भाई साहब आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, आपका इस सभा में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप सभी, या यूं कहें कि आपको कौन नहीं जानता है ना, सभी जानते हैं ना। बाबा मिलन में, कैड के प्रोग्राम में, अदर कोई शिविर में, कोई कॉन्फ्रेंस में, हर जगह आप बाबा की सेवाएं करते हैं। बहुत स्पेशल आपकी सेवाएं रहती हैं, आप में बाबा ने बहुत सारी विशेषताएं भरी हैं। जिन विशेषताओं को आपने भरपूर बाबा के घर में लुटाया है और एक एक बाबा के बच्चे को बाबा तक पहुंचाने की भरपूर सेवाएं की हैं, आपकी विशेषताएं इतनी श्रेष्ठ हैं कि आप सभी जानते हैं भाई साहब स्पेशलिस्ट किसके हैं, दिल वाले। इसलिए कुछ शब्द कहूंगी, दिलाराम के दिल में बसते हैं आप। कहाँ रहते हैं भाई साहब? दिलाराम के दिल में बसते हैं आप। त्याग तपस्या का सुंदर एग्जाम्पल हैं आप। पेशेंट को पेशेंस का पाठ पढ़ाते हैं आप। कैड वालों को दिल वाला बनाते हैं आप। तो आपकी दिल की धड़कनों से भी, आपके दिल की धड़कनों में भी एक ही संगीत बजता है, कौन सा होगा? मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। तो आज का विषय भी है मेरा, तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। तो हम सभी आदरणीय भाई जी को सुनेंगे। ओम शांति,
ओम शांति। चलिए हम दो मिनट फिर मन बुद्धि को एकाग्र करके अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होके और आत्मा से महसूस करो कि आत्मा से के साथ ऊर्जाएं है ना, ज्ञान, पवित्रता, शांति, रूहानी प्रेम, अतिंद्रिय सुख, आनंद, सर्व शक्तियां है ना। शरीर में कितनी सेल्स होती हैं पता है आपको? कितनी कोशिकाएं? 80,000 अरब है ना। सारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 अरब है ना, मैक्सिमम 8 अरब। और हमारी पॉपुलेशन कितनी है? आत्मा की कितनी प्रजा है? 80,000 अरब। तो सबसे बड़ा राजा तो हम हुए ना। तो हमें इस पूरे विश्व, पूरा जो शरीर रूपी दुनिया है, इस दुनिया को चलाना है। उसमें कितनी कितनी आत्मा, कितनी शरीर, कितनी कोशिकाएं? 80,000 अरब कोशिकाएं। और इन सबको आत्मा कैसे चलाती है? ज्ञान, ज्ञान मन सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, रूहानी प्रेम, हरेक सेल को, हरेक कोशिका को सातों एनर्जी चाहिए। सबको सत्य की समझ चाहिए, पवित्रता चाहिए, शांति चाहिए, रूहानी प्रेम चाहिए, अतिंद्रिय सुख चाहिए, आनंद चाहिए और आठों शक्तियां चाहिए, है ना। तो इससे मैं आत्मा सारे शरीर के एक सेल को नरिश कर रही हूं, पोषण कर रही हूं, ठीक है। ऐसा महसूस करो कि आत्मा से कैसे एनर्जी, किरणें नहीं, एनर्जी करो, जैसे वाइब्रेशंस जा रहे हैं सारी एक कोशिका में, उन वाइब्रेशंस को महसूस करो। और क्योंकि मुझे आत्मा के पास ये सातों एनर्जी कम हो गई है, तमो प्रधान माना लगभग ना के बराबर हो गई है। परमात्मा इन सातों एनर्जी का पावर हाउस है, वो मेरा पिता है, वो मेरा हर संबंधी, सर्व संबंधी है, हर समय है, हर जगह है। और उसको, उस संबंध से वो करंट को महसूस करो, अपने अंदर आत्मा महसूस करो और उससे सारे शरीर में एक एक कोशिका में। चलो दो मिनट के लिए इसमें स्थित हो जाओ, ऐसे ही बिल्कुल बाबा और आप कंबाइंड हो जाओ और डबल इंजन से सारे शरीर को एक एक सेल में, सातों हर सेल में महसूस करो सत्य की समझ, कैसे एक एक सेल में चली गई है। मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे सारे संबंध उसके साथ है। सिस्टेड रूपी राम से साक्षी हो जाओ, पवित्रता को महसूस करो, शांति को महसूस करो। चलो आज की मुरली में हमने सुना कि आत्मा का पेट न? आत्मा का पेट खाली हो गया क्या? भरा हुआ है आत्मा का पेट, खाली हो गया है ना, और बाबा उसको इतना भर देते हैं कि क्या होता है, तृप्त हो जाती है आत्मा। तो आत्मा का पेट कौन सा है? ये वाला, ये शरीर का पेट नहीं, ये तो ना। आत्मा का पेट कौन सा है? बुद्धि है ना, आत्मा का पेट है बुद्धि है ना। तो बुद्धि रूपी पेट जब से आधा कल्प से हम विकारों में आए, हम देहभान में आए है ना, देह अभिमान में आए, तो आत्मा का पेट क्या होता चला गया? विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश, और उसके जो बाल बच्चे थे उसकी वजह से जो आदतें पड़ गई हमको। कौन सी आदत पड़ी? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश, हमको आलस की आदत पड़ गई, संस्कार बन गया आलस का संस्कार। देहभान का नेचर जो थी, देहभान का स्वभाव जो था वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है ना। देवान आते ही हमें काम विकार आता है, काम है ना, देह की तरफ आकर्षण पैदा होता है, देह की वृत्ति हो जाती है, और क्रोध आता है, लोभ आता है, मोह आता है, अहंकार आता है। और जब हमारे अंदर पांच विकार आते हैं देवान के कारण, तो हमें आलस आता है, क्योंकि सारी एनर्जी जल जाती है। सबसे नंबर वन दुश्मन कौन सा? ब्राह्मणों का आलस्य है ना। दूसरा अलबेलापन आता है ना, केयरलेस हो जाते, छोड़ो ना, थोड़ी देर और सो जाते हैं, थोड़ा ऐसा कल कर लेंगे, शाम को टालने की आदत पड़ जाती, क्योंकि एनर्जी नहीं होती ना अंदर, उमंग उत्साह खत्म हो जाता है ना, उमंग उत्साह खत्म हो जाता है, तो हमारे अंदर हम टाल देते हैं कामों को है ना, अच्छे काम को टालते रहते हैं ना, बुरे काम तो होते ही रहते हैं, अच्छे काम को हम टालते रहते हैं है ना। हम दृढ़ता हमारे अंदर नहीं आती है ना, दृढ़ता नहीं आती है, कोई काम अच्छा काम करने की दृढ़ता है ना, और बिना दृढ़ संकल्प के सफलता नहीं मिलती। ब्राह्मण जीवन में भी अगर हम किस सफलता असंभव को संभव करना चाहते हैं तो क्या चाहिए? दृढ़ता चाहिए। दृढ़ता आएगी नहीं है ना, क्योंकि हमारी एनर्जी नहीं है, हम अलबेलेपन हो जाते, उससे फिर प्लस दोष दृष्टि में सबके दोष दिखाई देने लगते हैं है ना। देवान आते ही हमारी आदत पड़ जाती है दूसरों में दोष दिखाई देने की ना, पति को पत्नी में दोष, सब दोष दिखाई देने लगते हैं ना, और पत्नी को पति में, और पति को पत्नी में, बच्चों को माँ बाप में, माँ बाप में बच्चों को है ना, और ऐसे ही एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय में, और एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर्स में ना, मतलब जहां भी देखो तो एक दूसरे में दोष दिखाई, ये आदत पड़ जाती है ना, बदला लेने की भावना पैदा हो जाती है, शक। देवहान का संस्कार आदत ही है चेक करना, अनुमान लगाना, चिंता करना है ना, ये आदत, चिंता करने की आदत पड़ जाती है, ना चाहते भी होती है ना, चिंता करना है ना, डर लगना, ये भी आदत हो गई, और प्रेशर में रहना हमेशा, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए ना, और फिर ईर्ष्या द्वेष की आदत पड़ जाती है। तो ये जो है हमारे अंदर जो भर गया था, मतलब इससे क्या हो गया, पेट खाली हो गया था, आत्मा का बुद्धि रूपी पेट खाली हो गया था। मतलब आत्मा को क्या चाहिए, आत्मा को क्या खाने को चाहिए, आत्मा को बुद्धि में क्या भरा होना चाहिए? आत्मा की जो सात एनर्जी है ना, ज्ञान, सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, रूहानी प्रेम, अतिंद्रिय सुख, आनंद, और शक्तियां, आठों शक्तियां ना, तो ये शक्तियों से आत्मा का पेट भरता है ना? क्योंकि हम देवान में रहने से विकारों में प्रैक्टिस करते आए, विकारों को ये अपना नेचुरल स्वभाव समझते आए, और देवान के संस्कारों को ये अपनी नेचुरल आदत समझते आए, तो उसकी वजह से आत्मा में ना ज्ञान रहा, ना पवित्रता रही, ना शांति रही, ना प्रेम रहा, ना सुख रहा, ना आनंद रहा, ना शक्तियां रही, और आत्मा का पेट खाली हो गया ना। हमेशा आत्मा ढूंढती रहती है, कहां ढूंढती रहती है, कहीं शांति मिले है ना, कहीं पवित्रता मिले, कहीं ज्ञान मिले, इसलिए हमने क्या किया, शास्त्रों को पढ़ा है ना, हमने किताबें पढ़ी है ना, ज्ञान कहां पे ढूंढा, सत्य की समझ कहां ढूंढी, शास्त्रों में सूझी, किताबों में पढ़ी ना, साइंस की खोजें की, इसके लिए सत्य को जानने के लिए है ना, और फिर पवित्रता कहां ढूंढी, पवित्रता हमने शैंपू में ढूंढी, साबुनों में ढूंढी है ना, है ना, नहीं, और वो डिटर्जेंट्स आते हैं उनमें ढूंढी है ना, शांति कहां ढूंढी, जंगल में ढूंढी है ना, तीर्थ स्थानों पे ढूंढी रूहानी प्यार कहां ढूंढा? प्यार कहां ढूंढा? शरीरों में ढूंढा, संबंधों में ढूंढा, है ना। खुशी कहां ढूंढी? खाने में ढूंढी, है ना। आनंद कहां ढूंढा? है ना, फिल्मों में ढूंढा, है ना, फिल्मों में ढूंढा या कोई और चीजों में, बाहरी चीजों में ढूंढा। और शक्तियां कहां ढूंढी? जिम में ढूंढी, है ना, एक्सरसाइज करने में, मसल्स बनाने में, नहीं हमें ही ढूंढते गए ना। तो हमने संबंधों में, संपर्क में, पदार्थों में, देह में ढूंढते गए, संबंधों में ढूंढते रहे, और संपर्क कॉन्टेक्ट, ऐसे किसी व्यक्ति से संबंध, संपर्क हो जाए उससे मुझे सब मिल जाए, है ना। और कहां ढूंढा? पदार्थों में ढूंढा, है ना, चीजें, पैसे में, व्यसनों में ढूंढा, है ना, शराब, सिगरेट और ड्रग्स में, और चाय कॉफी में, है ना, चॉकलेट्स में, है ना, उसमें ढूंढा ना। तो इस तरह से हम ढूंढते, मतलब जहां नहीं था वहां ढूंढते थे ना, सारी गलत। तो अभी हमको ये बहुत गहराई से देखना है कि सचमुच में ये जो आत्मा का जो पेट भरने की बात, तृप्त आत्मा हो जाए, सतो प्रधान हो जाए, सतो प्रधान माना, सतो माना सात, सतो माना सात, प्रधान माना भरपूर, सातों गुणों में भरपूर हो जाए, और रजो माना श्याम, रजो माना श्याम, जब आत्मा, जब त्रेता पूरा हुआ तो श्याम आ गई, श्याम माना आधी एनर्जी खत्म हो गई। आत्मा पहले जो राजा थी, आत्मा का राज्य किस पे था? बुद्धि पर, मन पर, संस्कारों पर, मतलब सातों एनर्जी से भरपूर कर देती थी। बुद्धि भी सातों एनर्जी से भरपूर थी, पेट भरा हुआ था बुद्धि, मतलब बुद्धि रूपी पेट, मन भी भरपूर था, संस्कार भी, हमारे संस्कारों में, आदतों में ये सातों गुण भरे हुए थे, और आंखों में, कर्मेंद्रियों में, आंखों में, कान में, नाक में, मुख में, हमारे स्किन के एक एक सेल में, रोम रोम में, शरीर के 80,000 अरब कोशिकाओं में क्या भरा हुआ था? ये सातों गुण भरे हुए थे, भरपूर थी एनर्जी, है ना, एकदम। हमारी काया भी कंचन थी, कंचन माना सोने जैसी काया थी, सोने जैसी माना चमकती थी। अभी भी देखो, अभी तो 20% ऑक्सीजन है, तो भी हमारी स्किन में थोड़ा लाली लल्ली दिखाई देती है ना। और सो जो सत्युग में एनर्जी, सत्युग में ऑक्सीजन लेवल 50% होता है, कितना होता है? 50% ऑक्सीजन लेवल, वायुमंडल में 50% ऑक्सीजन लेवल होता है, तो कैसी काया होती होगी, है ना। 20% में भी लाल है, खून लाल है, और जब 50% होता होगा तो कितनी लाल होती होगी, है? 20% में भी, मतलब अगर ये जो कीड़े मकोड़े, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस कहां होते हैं? सांप, बिच्छू, मच्छर, मक्खी कहां होते हैं? जहां ऑक्सीजन कम होती है, बिलों में, कोनों में, अंधेरे में, है ना, जहां पर, जहां ऑक्सीजन लेवल 20 की बजाय 18 होती है, 15 होती है, 10 होती है, है ना। कॉकरोच कहां होते हैं? जहां ऑक्सीजन कम होती है। सांप कहां होते हैं? जहां ऑक्सीजन कम होती है, तो वहां पर होती है ना। इसलिए बदबू पैदा होती है दुनिया में ना, सारी जगह बदबू, सड़न पैदा होती है। बॉडी में भी कहां बदबू क्यों होती है? क्योंकि ऑक्सीजन वहां लेवल कम होता है। तो अगर सोचो, धरती पर जब ऑक्सीजन 50% थी सत्युग के टाइम, क्योंकि इसका कनेक्शन किससे है? धरती पे प्लांट से है। कितना धरती पेड़ पौधों से ढकी हुई है, जंगलों से ढकी हुई है, राइट। अभी 20% धरती पेड़ों से ढकी हुई है ना, तो सिर्फ 20% ऑक्सीजन है। 1800 में लगभग 33% धरती पेड़ से ढकी हुई, जंगलों से ढकी हुई थी। उस समय कहते हैं, उस समय धरती पर 30-33% ऑक्सीजन, 30-35%। और ऐसा पाया गया कि आज से 3000 साल पहले एंटार्क्टिका है ना, जो एंटार्क्टिका नामक द्वीप है ना, जहां पर बर्फ ही बर्फ है ना, वहां पर उन्होंने आइस कोर ड्रिलिंग करके देखा है। वहां पर देखा तो उन्होंने पाया कि वहां पर जो गुफाएं थी ना पहाड़ों में, उस समय का अचानक वातावरण में जो ट्रैप होगी ना हवा, उसमें देखा 50% ऑक्सीजन। आज भी उस जो हवा वहां पे ट्रैप हुई मिली ना, उसमें 50% ऑक्सीजन। तो मतलब आज से 3000 वर्ष पहले धरती पर 50% ऑक्सीजन थी। तो उस समय कोई वायरस होगा, बैक्टीरिया होगा, मक्खी होगी, मच्छर होगा, है ना, बदबू होगी कहीं पे, कुछ कीटाणु नहीं होगा, कॉकरोच होंगे, सांप होंगे, बिच्छू होंगे, ये चीजें वहां हो ही नहीं सकती है, रह ही नहीं सकती धरती पर। और हमारे शरीर कैसा होगा? हमारा शरीर भी ऐसा ही होगा कि सत्युग में भरपूर एनर्जी से भरपूर कहीं सारी जगह, इसलिए गर्म महल होता है ना, इसलिए क्या होता है गर्म महल होता है, बच्चे को मतलब तंग नहीं होना पड़ता, बॉडी भी एकदम बैलेंस्ड में होती है ना, राइट। पर वो बने कैसे मुझे बताओ, अभी कैसे हो कि हमारी आत्मा सातों एनर्जी से भरपूर हो जाए और मन भी भरपूर हो जाए, है ना, संस्कार भी भरपूर हो जाए, आंखें भी भरपूर हो जाए, सब कुछ एक एक सेल सातों एनर्जी से भरपूर हो जाए, कौन सी दुकान से मिलेगा, कौन सी दुकान से मिलेगा, किससे मिलेगा, मतलब ये नक्की करने की बात है, नक्की समझते हैं, फाइनल करने की बात, अपने आप से बात कर लो, क्योंकि हमें अनुभव, सबको अनुभव है, हम सब ने आधा कल्प से बहुत अनुभव किए, देहधारियों में देखा, वैभव में देखा, पदार्थों में देखा, है ना, संबंध संपर्क में देखा, पदार्थों में देखा, कुछ मिला क्या। अभी भी अपने बच्चों से बात करो, आपको जब आपके अपनी अपनी कोई बहने माताएं अपने पति से बात करके देखो, एनर्जी चार्ज होती है कि खत्म हो जाती है, शांति प्यार खुशी खत्म हो जाती है कि पैदा हो जाती है। अपने बच्चों से बात करके देखो, बच्चों से बात करके देखो, शांति प्यार खुशी वो लूट लेते हैं कि दे देते हैं, आप बताओ। अपनी पत्नी से बात करके देखो, है ना, क्या होता है, शांति प्यार खुशी ले लेते हैं कि वो दे देते हैं, किसी भी देहधारी से आप बात करके देखो, है ना, किसी पे किसी चीज में बुद्धि लगा के देखो, टेलीविजन में, अखबार में, किसी चीज में बुद्धि लगा के देखो, व्हाट्सएप देख कर देखो, राइट, व्हाट्सएप खोल के देखो, मोबाइल खोल के देखो, किसी से बात करके देखो, आपकी शांति खत्म हो जाती है, आपकी पवित्रता खत्म हो जाती है, रूहानी प्रेम खत्म हो जाता है, इंद्रिय सुख खत्म हो जाता है, आनंद खत्म हो जाता है, शक्तियां खत्म हो जाती है, मतलब आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आपको सुबह सुबह किसी का फोन आता है, किसी से बात करो, वो क्या सुनाएगा आपको, चाहे बेटा हो बेटी हो आपकी, या कोई दोस्त हो या कुछ भी हो, क्या सुनाएगा, टीवी खोल लो तो क्या सुनाई देगा, है ना, सारा मतलब बैटरी डिस्चार्ज होने वाली बात है ना। नहीं तो अब हमको देखना कि मेरे को चार्ज करने वाला कौन है, मेरी आत्मा रूपी बैटरी पेट भर जाए, तृप्त हो जाए, किसी की तरह मेरी आंख डूबे ही नहीं, किधर मेरी आंख जाए नहीं, तो वो कहां से मिल सकता है, कहां से मिल सकता है, मतलब अपने आप से कई बार हम लोग फिर भी गलत फहमी में फंसे रहते हैं, कहीं से कुछ मिल जाएगा, कहीं से कुछ मिल जाएगा, इससे तो थोड़ी बात कर लो, इससे भी थोड़ी बात कर लो, मतलब किसी को अपना बहन बना लेते हैं, किसी को अपना भाई बना लेते हैं, किसी को अपना, अभी भी बाबा के बच्चे बनने के बाद भी ना किसी को अपना बहन बना ले, बहन नहीं है तो भी उसको दूसरी को बहन बना लेंगे, भाई नहीं है तो उसको भाई बना लेते, धर्म का भाई बना लेते हैं, किसी को मतलब अभी भी संबंध बनाते रहते हैं, ब्राह्मण भी बनाते रहते हैं, नहीं बनाते। तो अगर हमारा हमने संबंध किसी से भी बनाया, किसी से हमने लौकिक में कुछ अलौकिक में भी कुछ बनाया ना, तो भी हमारा संबंध संपर्क हमारा, जिसके कहते हैं मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, है ना, देखो कि हमारा सचमुच में मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई है। किसी डॉक्टर को भी अपना बनाया, आपको पेट में दर्द हुआ, हार्ट में दर्द हुआ, थोड़ा सा भी किसी को भी अपना बनाया तो क्या होगा, क्या होगा, मतलब उतना ही वहां से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और समय पर धोखा खाएंगे, राइट। तो अब हमको बहुत गहराई से समझना है, ऐसी बात को हम गहराई से समझते हैं कि सचमुच में हमें अपने आप से क्लियर कर लेना है कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। हर संबंध की अनुभूति, हर संपर्क की अनुभूति, हर पदार्थ की अनुभूति हमें बाप से करनी, पक्का, इसकी अनुभव की अथॉरिटी बन जाना है। क्योंकि हरेक को, हम में से हरेक को क्या चाहिए, क्या चाहिए, संबंध तो चाहिए ना सभी को, ना संबंध सबको चाहिए, अकेला तो हम रह नहीं सकते, तो वो संबंध की अनुभूति हम कैसे करें बाप के साथ, अगर मुझे बाप से सर्व संबंध की अनुभव की अथॉरिटी बन जाए हम, जैसा भी आवश्यकता हो समय अनुसार, क्योंकि हमें शांति क्यों हुई है, हमारी पवित्रता क्यों गई है ना, हमारा प्यार क्यों खत्म हुआ है, किसी से नफरत, किसी से ईर्ष्या, किसी के प्रभाव में, किसी के लगाव में, किसी झुकाव में, किसी के टकराव में क्यों फंस गए, हमारी इच्छाएं क्यों हो गई हमको, है ना, हम उदास क्यों हो जाते हैं। तो वो अगर हम कारण देखें तो उसका कारण ही है हमारे देह के संबंध संपर्क, है ना, हमारी आसक्तियां, है ना। तो अगर हम अपने आप को गहराई से समझ लें कि कैसे हमें अब अपने आप को एक एक संबंध की अनुभूति बाप से करनी है, और इसके लिए बिल्कुल क्लैरिटी अपने मन में हो, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि हम कई बार कहते हैं मैं खाली अपने को आत्मा समझ लूं, आत्मा समझ के रहूं, तो हम आत्मा समझ के रह सकते हैं क्या, अपने आप को क्या समझते हो, ये हमें समझ आ गया मैं देह नहीं मैं आत्मा हूं, ठीक है, ये क्लियर हो गया बिल्कुल ना, कि मैं आत्मा शरीर को चलाती हूं, मैं आत्मा से सात एनर्जी मेरे पास है, उससे शरीर चल रहा है, तो क्या हम इसमें टिक सकते हैं, रट्टा मार लो आप, 1,00,000 बार लिख लो मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं, टिक जाएंगे आत्मिक स्थिति में, टिक सकते हैं। मैं छोटी सी आपको एग्जांपल बताता हूं, एक ना जैसे एक ना एक थे जो क्या कहते हैं ना एक सेठ सेठ से एक सेठ ना सेठ सेठ समझते हैं ना, बहुत पैसे वाला आदमी था, तो उसकी शादी मतलब उसकी वाइफ थी, तो उन्होंने बहुत कोशिश की, उनको बच्चा ही नहीं हुआ, मतलब सेठ भी 45 साल का 48 साल का हो गया, सेठानी भी 42 साल 43 साल की हुई, सब कोशिश कर ली उन्होंने, कुछ बच्चा नहीं हुआ, फिर उनको किसी उन्होंने मतलब एक कोई मानता अपने मन मानता समझते हैं ना, मन में कुछ उन्होंने संकल्प किया, दृढ़ संकल्प, किसी ने कहा ऐसे करो तो उसने किया, और उसको 42 साल की उम्र में उस लेडी को बच्चा हुआ, लड़का हुआ, तो उसने वो मानता की थी कि जैसे हम पहली बार जब कुंभ का मेला आएगा तभी उसके बाल कटवाएंगे, उस बच्चे के बाल तभी कटवाएंगे जब वो कुंभ का मेला हरिद्वार जाके कटवाएंगे ना, तो कुंभ का मेला आया जब वो 2 साल का हो गया था ना, तो तब उसके बाल जाके आप कटवाए, वो जब बच्चा बहुत चंचल था तो उसको उन्होंने वो क्या किया, उसको ले जा करके और वहां बाल कटवाए, बच्चा चंचल था तो नाई से बाल कटवाने के बाद वो बच्चे होते हैं भाग छुड़ा के भाग जाते ना, सब भीड़ तो बहुत थी, छुड़ा के भाग गया, तो छुड़ा के भाग गया माँ के पास से, तो फिर वो हो गया, तो ऐसे लोगों के हाथ में पड़ गया जो होते हैं ना, जो चोरी करते हैं, जेब काटते हैं, गंदे लोग होते हैं ना, गैंग्स होते हैं उनके, और ये ढूंढते रहे, मिला ही नहीं बच्चा, थक हार के अपने शहर में पहुंच गए, और बच्चा क्या हुआ, उसको चोरी करना सिखाया उनके लोग, उन्होंने पहले तो छोटा छोटा 2 साल का था तो नेचुरली उसको थोड़ा बड़ा किया, फिर उसके बाद चोरी करना सिखाया, भीख मांगना सिखाया, जेब काटना सिखाया, था तो सेठ का बच्चा, और वो ऐसे उसको पिटाई भी करते थे, पैसे भी ले लेते थे उसके, सबको कहता माई बाप, इनके सबके सबके माँ बाप होते हैं, बच्चे देखता था ना, तो मेरा भी कोई माँ बाप होगा, तो माई बाप ऐसे करके और जब मांगता था, करता था, तो मांगता रहा, पिटाई भी हुई उसकी, बहुत बार उसको पुलिस ने पकड़ के बाल सुधार गृह में भी डाला, फिर छोड़ दिया, फिर वापस आके फिर चोरी की, ऐसे करता रहा ना, 12 साल का हो गया, एक दिन वो तंग होके ना उसने क्या किया, ट्रेन में बैठ के कहीं निकल गया, फिर वो उतर गया किसी दूसरे स्टेशन पर उतरा, ऐसे वहीं पर उसका घर था, वो तो अपने माँ बाप को जानता नहीं था, किसी किसी को माई बाप बोलता था, ये मैं कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी भी ऐसी हालत है ना, फिर वो जो है उसको वहां जाकर के वो उतर गया, वो कई दिन से खाना पीना खाया नहीं था, भीख भी मांगी नहीं थी ढंग से, तो उसने खाना भी नहीं खाया था, तो वो नीचे उतरा, फिर उतर के गाँव में इधर उधर गया उस शहर में, और वो कहीं भी जाए जहां कहे उसको कहे कि भी चलो आगे चलो, चल 12 साल का हो गया था, कमा के खाओ ये खाओ, मतलब लोग डांट के भगा देते थे, भूखा था बेचारा, कपड़े भी फटे हुए थे, बाल भी कई दिन से नहाया नहीं था, तो गंदा था ना पूरा एकदम से, पर उधर उसकी माँ जो क्या कहते उसकी माँ को अपने बच्चे से बहुत प्यार था, तो उसको जैसे 2 साल का था उसको लगता कहीं तो जिंदा ही हो, कहीं तो हो गई मेरा बच्चा, उसके लिए हर साल कपड़े बनवाती थी, उसका बर्थडे मनाती थी, है ना, उसको मतलब उसको बहुत हर बच्चे में उसका उस अपने बच्चे को देखती थी, उसकी उम्र के नाता 3 साल का हो गया, अभी 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, 6 साल का हो गया, ऐसे 12 साल का हो गया, तो हर बच्चे में अपना बच्चा देखती थी, ढूंढती थी, बचपन का निशान था उसके बाएं बाजू पे, है ना। ये रियल कहानी है वैसे ना, है ना, तो ये रियल बात है ये ना। तो उसका निशान यहाँ पे था, बचपन का मार्क मकुत ना उल्टे, हाँ बर्थ मार्क उल्टे पाथ पे था। तो वो बच्चे का पैर, कई बार का तो शर्ट भी देख के खोल के देखती थी किसी का ना, बच्चे कोई ऐसे घूम रहे होते ना, बच्चे की शर्ट भी खोल के देखती थी कि कहीं मेरा बच्चा तो नहीं है। तो अभी बच्चा घूमते घूमते वो अपने घर पे पहुंच गया, जहां पर उसको तो पता नहीं था, अपने घर में जाके पहुंच गया और वहां जाके कहा कि मैं तीन चार दिन से भूखा हूं, उसने कहा ओ मुझे कुछ खाने को दो। इतना बड़ा घर है, उसने सोचा यहाँ तो कुछ जरूर मिलेगा। एक नौकर आया, कहता भाग जाए यहां से, आप भीख मांगने आ जाते हैं। तो फिर भी खड़ा रहा। फिर दूसरा नौकर आया, उसने डांट के भगाया। फिर थोड़ी देर में वही आके खड़ा हुआ। तीसरे नौकर ने ऐसे डांट के भगाया। अचानक उसकी माँ किसी कारणवश बाहर निकली और वो तो मतलब हर बच्चे में उसकी नजर तो ये रहती थी। तो उसने देखा उसके यहाँ बाजू फटी हुई थी, है ना, तो उसका निशान था देखा। तो बच्चे को देखा, अरे तो मेरा बच्चा। उसको मतलब निशान देख के बस उसकी शक्ल वकल जैसी थी, उससे कुछ पता नहीं, वो तो अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे। उसने तुरंत मेरा बच्चा मिल गया, मेरा बच्चा, शोर मचाना शुरू किया। निशान देख के उसको अपने घर लगा लिया, अंदर ले गई, उसे नहला धो के नहलाया उसको, है ना, सब सफाई वफाई करके सब बाल वाल धो के और उसको क्या किया, उसको वो कपड़े तो उसके पास तैयार थे, कपड़े पहनाए, है ना। अपने पति को बुलाया, देखो देखो हमारा बच्चा मिल गया। कहते ऐसे कैसे कहते तुम हमारा बच्चा मिल गया, देखो ना इसका बर्थ मार्क। उसने कहा, सोफे पे बिठाया, फिर नौकर चाकर सब आ गए, सबको बुलाया, देखो तुम्हारे छोटे मालिक है ना, छोटे बड़ा बड़ा मालिक है छोटा मालिक ना, जो उसको कह रहे भाग जा, अभी कहते थोड़ी देर पहले कह रहे भाग जा कुछ नहीं मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, अभी क्या बोल रहे छोटा मालिक छोटा मालिक छोटा मालिक ने, छोटे सेठ साहब छोटे सेठ साहब ने, सब उसकी जी हजूरी कर रहे थे ना। अभी तो हम कैसे थे, हम भी बिछड़े ना माँ बाप से, बिछड़े ना, है ना, माँ बाप से बिछड़े सेठ के बच्चे थे, चंचल चंचलता की ना द्वापरी के शुरू में बिछड़ गए, सारी उम्र भीख मांगते रहे, नहीं भीख नहीं मांगी क्या, कटोरा हमेशा ही लेके। एक फिल्म का गीत था ना, दे अल्लाह के नाम तुझको, तुझको दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, सुबह से हो गई शाम तुझको अल्लाह रखे, इंटरनेशनल फकीर आए ना। अभी हमारा हालत तो यही थी ना, हनुमान जी को देखा, हनुमान जी का कटोरा कर दिया, राम के आगे कटोरा कर दिया, लक्ष्मण कृष्ण के आगे कटोरा किया, कभी शेरा वाली माता, चलो शेरा वाली छोड़ो, काली माता के आगे कर दिया, मैं कटोरा हमेशा ही ऑन रहता था, सुबह से लेके उठ शाम तक कटोरा नहीं। हमने ढूंढा तो बहुत भगवान को, भगवान हमें मिला के भगवान ने ढूंढा, भगवान ने हमको ढूंढा, ब्रह्मा जैसे ब्रह्मा उसकी माँ ने उसको आइडेंटिफाई किया ना, और माँ उसको क्या बना लिया अपना। अब उसको ये याद है कि मैं इसका बच्चा हूं, इसका बच्चा हूं, तो वो सेठ है ना, तो मास्टर सेठ है ना। अगर ये भूल जाए तो क्या है, वो भिखारी का भिखारी है, भिखारी का भिखारी है कि नहीं, नहीं? अगर वो तो फिर तो वो ही मांगने वाला है ना। अब बच्चा तो कपड़े पहना रही है, नहीं मम्मी मम्मी मेरे को भीख मांगी, जेब काटने की आदत है, जरा मैं थोड़ी देर जेब काट के लाऊं क्या, ऐसे करेगा क्या। आज बाबा ने कहा ना, देह अभिमान अभी भी है तो अभी भी हम भक्त हैं, जब तक हम कर्मातीत नहीं बने हैं तब तक हम भगत नहीं है, जब तक हमने विक्रम विनाश नहीं किया तब तक हम मांगते ही रहते हैं ना। बाबा को भी कहते बाबा हमारे काम कर दो ना, बाबा ये कर दो, मेरे विक्रम विनाश कर दो ना, हे भगवान तुम मेरे विक्रम, बाबा मेरे विक्रम विनाश कर दो, बाबा मेरे को ऐसा नहीं होना चाहिए, बाबा मेरे को गुस्सा नहीं आना चाहिए। अरे गुस्सा तुम करता है कि भगवान करता है, भगवान गुस्सा करने से तुम्हें रोकता है, तुम रोको ना अपने आप को, है ना। भगवान मेरे को आराम, बाबा मेरे को नींद नहीं आनी चाहिए, मैं योग करने बैठता हूँ, चलो अरे नींद नहीं आनी चाहिए, तुम रोकोगे अपने आप को ठीक करोगे, भगवान तुम्हारी नींद रोकेगा, है ना। मतलब हम भगवान को अभी भी मांगते ही रहते हैं, सुना, उठते ही अभी भी उठते ही मांगना शुरू करते, भगवान आज अमृत विलास अच्छा से करा देना, है ना। नहीं होता ना, एक होता ना, एक बार क्या हुआ, एक ना वो क्या था, वो एक वो था क्या कहते हैं, एक आदमी था मतलब 17-18 साल लड़का, जवान लड़का था, उसने बाजार से गुजर रहा था, तो बाजार से गुजर रहा था तो उसने मतलब कई दिन से भूखा था, उसने एक आदमी को बाजार में से निकलते निकलते कहा कि पैसा मैं तीन चार दिन से भूखा, मुझे कुछ खाने को दो। तो उसने कहा टमाटर खाओ, है ना, तो टमाटर खाओ, तो उसने साथ में टमाटर की रेड़ी थी, रेड़ी समझते ना, एक आदमी टमाटर भेजा था, वो टमाटर वाले के पास चला गया, उसने कहा भाई मैं तीन चार दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ टमाटर खाने को दे दो। तो उसने कहा मैं इतने साल से टमाटर भेजता हूं, किसी ने आज तक मुझे टमाटर भीख में नहीं मांगे। उसने तरफ किसने कहा टमाटर भीख में मांगने को, तो उसने देखो ये आदमी खड़ा है, इसने कहा, उसने कहा ये तोतला है ये का को टा बोलता है ना, है ना। तो आप उठते ही टमाटर खाना शुरू करते हो नहीं, के कटोरा ही लेके घूमते हो। हम में से आधे ब्राह्मण, एक्चुअली आधे के 95% ब्राह्मण अभी भी भक्ति भक्ति करते हैं, 99% ही करते हैं ना। आज की मुरली थी ना, मेरे को बहुत पॉइंट टच किया कि सचमुच हम भगत अभी तक हमारे अंदर देवान है ना, तो हम अभी भी भक्ति हैं, है ना। क्योंकि देवान है तो हम ये टमाटर नहीं खाते हैं ना, कटोरा कटोरा ही रखते हैं हम। तो उठते क्या करना चाहिए आपको, टमाटर खाना चाहिए, है ना, है ना। आप मेडिटेशन शब्द भूल जाओ, क्या याद रखो है टमाटर खाना है ना। मेडिटेशन वर्ड मुश्किल लगता है ना, तो अभी टमाटर खाने की आदत डालो, ठीक है। टमाटर खाओ तो पेट में कीड़े नहीं रहते ना, सारे विक्रम विनाश हो जाते हैं, ठीक है। अभी मेडिटेशन याद नहीं करना, योग नहीं करना, है ना, क्या करना, टमाटर लाल लाल होता है ना टमाटर, नहीं तो शक्तिशाली बनने का तरीका है टमाटर का, नहीं राइट। पक्का रहेगा टमाटर खाना है, सुबह से लेकर शाम तक टमाटर खाना है, मांगना कभी भी नहीं, है ना, ठीक है। तो एक तो ये वाली बात होगी। दूसरी बात क्या है कि हम लोग संबंधों में समझते हैं, हम संबंधों में बहुत सुख है। कई लोग कहीं ना कहीं संबंध में, कोई पत्नी में, कोई बच्चे में, कोई ना कोई ना ऐसा फील करते हैं कि हम कहीं ना कहीं हमारा कोई ऐसा संबंध संपर्क हमारा ऐसा है जहां से हमें सुख मिलेगा। उससे बात करते हैं, बड़े प्यार से बात करेंगे, आधा आधा घंटा बात करेंगे, पौना पौना घंटा बात करेंगे, जैसे मेडिटेशन कर रहे हो उससे करंट आ रही है। मैं देखा लोग 35-35 में लगे रहते, कान पे यूं कान गर्म हो जाता तो भी कभी लगे ही रहते। मतलब मैं देखा सचमुच में 30-30, 35-35, 40-40 मिनट, पूरा 45 मिनट योग में लगा देते हैं। उसी से बात करेंगे, फालतू बात करेंगे, इधर उधर की बात करते हैं। तो मतलब मैं सोचता हूँ कि क्या करते हैं लोग ना, है ना, पर चिंतन नहीं करता, पर लोग कहते हैं कि हमको इतनी इतनी बात करनी पड़ती है। तो मैं कहता हूँ मैं तो 2 मिनट से ज्यादा बात नहीं करता, ये 45-45 मिनट क्या करते हैं बातें। तो मेरे को आश्चर्य लगता है, कई बार हम संबंध में इतने खो जाते हैं। इसकी भी मैं छोटी सी बात बताता हूँ। एक बार क्या हुआ था, मैं आज वैसे नॉर्मली कहानियां नहीं सुनाता, पर आज मैंने कहा थोड़ी सी ना आपको, तो थोड़ा सुनाता हूँ थोड़ी सी बात, है ना, प्रैक्टिकल, ताकि याद रहे आपको ना। एक बार क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, मैं संबंधों की बात बता रहा हूँ, संबंध में क्या होता है। एक बार क्या हुआ, एक जैसे एक ना वो थे गांव में बड़े जमींदार होते ना, पैसे वाले थे बहुत, उनके बहुत पैसे वाले थे। उनके बच्चे जो भी होते थे ना, 2-3 साल के, 3 साल बच्चे होते थे, 2-3 साल में, 4 साल में मर जाते थे, है ना। 2 साल तक जिंदा रहते थे फिर मर जाते थे, है ना, तो ऐसे 2-3 साल में मर, 3-4 साल में मर जाते थे। तो अभी उनका एक पुरोहित में ना, उनका जो गुरु जी थे, वो इस बार बच्चा हुआ तो उनको जब 2 साल का हुआ तो वो बच्चे को देखने के लिए आए, पता चक्कर लगा के। उसने कहा तुम्हारा बच्चा जो है मर जाते हैं तो ये बच्चा मेरे को दे दो, तुम्हारे पास रहते तो मर जाते तो मुझे दे दो, मैं ले जाऊंगा, बड़ा करूंगा, पाल पोस के बड़ा करूंगा, तब तुम कभी, तुम्हें तो रहेगा मेरा बच्चा, कहीं तो है मेरा बच्चा। तो वो उस बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया, उसको शवासन वासन सिखाए, प्राणायाम सिखाए, गुरु के पास यही था, उसको अपने आश्रम में ले गया, उसको सिखाया। अब उसकी बच्चे की माँ को बहुत बार याद आता था, तो 18-20 साल का हो गया था, तो उसने उसको देखने की इच्छा होती थी पर डर के देखने भी नहीं जाती थी। उसने कहा पर कोई बात नहीं, अभी 20 साल का हो गया, अभी उसकी, उसने उसके अपने पति को भेजा आश्रम में कि जाओ उसको बुला के लाओ और उसको बोलो मैं मरने वाली हूँ, है ना, मैं आखिरी बार तेरा मुंह देखना, उसका मुंह देखना चाहती हूँ। तो गुरु ने भेज दिया, वो आया और वो ऐसे जानबूझ के लेट गई थी, बीमार होके, बीमार नहीं थी। तो उसने कहा देख बेटा मेरे, मेरी आखिरी, मरने की, मैं मरने वाली हूँ, आखिरी मेरी इच्छा है मरने से पहले तेरी शादी कर दो, है ना। तो अब वो बच्चा था, जवान भी था, तो उसने माँ की, पता तो माँ है मेरी, तो उसने कह रही ठीक है माँ मैं कर लेता हूँ, तुम मरने वाली है तो उसने शादी कर दी। तो माँ तो मरी नहीं, ठीक हो, कहते शादी जैसे बहू का मुंह देखा, कहते मैं तो ठीक हो गई, है ना, तो ठीक हो गई। फिर क्या हुआ, उसकी बच्ची, उसकी थोड़ी देर में बच्ची हो गई एक, तो बच्ची भी बड़ी हो गई। तो उसकी पत्नी बार बार बोलती थी मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती, एक मिनट भी रह नहीं सकती, मैं मर जाऊंगी जिस दिन तुम्हें कुछ हो जाएगा, तुम कहीं जाना मत, क्योंकि पता था कि गुरु कहीं भाग ना जाए वापस, उसकी सास ने बता के रखा था उसको कि इसको मैं शायद से कर, तो उसने कहा तुम ऐसे मैं तुम्हारे बगैर मुझको इतने बहुत स्वतः मेरे को बहुत प्यार करती मेरी पत्नी, मेरी बच्ची भी बहुत प्यारी है। तो एक दिन गुरुजी रास्ते मिल गए उसको, गुरुजी ने कहा कि तुम कहाँ गया, 3 साल हो गए तू घर से वहां से, तू तो एक दिन के लिए गया था अपनी माँ को देखने, क्या हुआ? कहता नहीं मेरी माँ ने ऐसे ऐसे किया, मेरी शादी कर दी, मेरी पत्नी मेरे बगैर एक मिनट रह नहीं सकती, और मैं तो इतनी मुझे इतना प्यार करती, इतना प्यार करती, इतना सब अच्छे से ध्यान रखती है मेरा, और मेरी बच्ची भी मेरे से बहुत प्यार करती है। उसने कहा गुरुजी ने कहा कोई किसी का नहीं होता बेटा, किसी का कोई होता नहीं, कोई संबंध नहीं होता है, कोई पत्नी तुमसे प्यार नहीं करती, कोई तुमसे प्यार नहीं करता, ना तुम्हारी माँ प्यार करती, ना तुम्हारा बाप प्यार करता है, ना तुम्हारी पत्नी, ना कोई कुछ तुमसे कोई प्यार नहीं करता, सब मतलब के स्वार्थी संबंध है। उसने कहा नहीं नहीं गुरुजी ऐसे कैसे हो सकता है। उसने कहा ठीक है तुम अपने जाके आज करो अपने घर जाओ, और तुम्हारी पत्नी को क्या पसंद है? उसने कहा खीर बहुत पसंद है उसको। उसने कहा ठीक है तो आज तुम खीर बनवा लेना, और खीर बना के और जब खीर डाल लेना उसको कहना अपने भी खीर डाल ले, मेरी भी डाल ले, और बच्चे के लिए भी थोड़ा डाल ले। तो उसने मतलब खीर खाते खाते तुम क्या करना, हिचकी लेके ना सांस रोक लेना, मैंने तुमको प्राणायाम करना सिखाया ना सांस रोकना, तुम सांस खींच लेना है ना, सांस खींच के और फिर देखना कितना प्यार करती है तुमसे, है ना। तो उसने ऐसे किया, खीर खाते खाते उसने क्या किया और उसने एक हिचकी ली और उसने सांस रोक लिया, तो सांस रोक लिया। अब उसकी पत्नी ने देखा कि भी ये तो गया, तो चिल्लाने को हुई एकदम जोर से, तो उसको लगा खीर तो मेरी खराब हो जाएगी खीर तो मेरी खराब हो जाएगी, अभी चिल्लाई सब आ जाएंगे, तो सब चाचे सब आ जाएंगे और फिर खीर तो मेरी रह ही जाएगी ना। तो जल्दी जल्दी उसने खीर खाई ना, खीर खाई, फिर खीर अपनी खीर खा के उसको याद आया करे ये बच्ची तो भूखी रह जाए, फिर चिल्लाने को हुई, फिर उसने कहा नहीं अभी नहीं चिल्लाती, बच्ची को खीर खिलाई। फिर उसके सामने जो खीर रखी थी ना उसके पति के सामने, उसने कहा ये तो खराब, तो वो खीर तो पी गई इसीलिए, और वो देख रहा था बीच बीच में क्या हो रहा है ना। तो फिर जोर से सारी खीर खा के ना फिर जोर से चिल्लाई, हाय मैं लुट गई, हाय मैं ऐसा हो गया, हाय मैं सुना। तो संबंध जितने भी खीर खाने वाले होते हैं ठीक है, इसलिए ध्यान रखना जितने भी संबंध होते हैं ना वो स्वार्थी होते हैं, सारे खीर खाने वाले होते हैं। अगर खीर मिल रही है तो खीर पहले खाएंगे फिर बाद में चिल्लाएंगे, सुना आपने, है ना। इसलिए पक्का कर लेना आपने, है ना, मन में पक्का कर लेना कि कोई भी बुद्धि कहीं भी जाने में फायदा नहीं है, राइट। तो याद रहेगा टमाटर याद रहेगा, खीर याद रहेगी, है ना। तो अभी आप कोई भी आदमी देखो तो देखना खीर, ये खीर खाने वाला है, कोई भी संबंध देखो खीर खाने वाले हैं, ठीक है, ये कोई संबंध मेरे नहीं है ना, ये सब मतलबी है, स्वार्थ, रियल में स्वार्थी संबंध है, रियल में स्वार्थी संबंध है ना। इसलिए पक्का कर लो। अब जो है हम इसकी गहराई में चलते हैं ना, संबंधों की गहराई में चलते हैं। देखो एक बाबा हमारा है ना, है ना बाबा, सत्य की समझ, बाबा हमने क्या कहा, हम आधा क्लास से क्या कर रहे थे, इसी में जी रहे थे, देह के संबंध, इसी को सत्य समझ के बैठे थे, देह के संबंध, देह के संपर्क, देह के पदार्थ और देह के स्वभाव संस्कार, ये असत्य है ना, असत्य माना ये झूठ है ना। सत्य की परिभाषा क्या है, सत्य सदा है, एटर्नल है, जन्म और मृत्यु से परे है, और दूसरी बात है देह जो सत्य है वो बदलता नहीं है। तो हम आत्मा में क्या सत्य है, हम एक इंसान सत्य क्या है, ये परमात्मा ने आके समझाया, हम इसी हमारी 99.99% समय अपनी देह की केयर में, देह के संबंधों की केयर में, देह के पदार्थों की केयर में, देह के स्वभाव संस्कार की केयर में। अब बाबा का बनने के बाद भी हमारा टेंशन अभी भी 99% इस पे रहता है, 90% तो रहता ही है, इन्हीं ने खोया रहता है, फैक्चुअल बात है, क्योंकि हमारा 10% माइंड ही कॉन्शियस माइंड है, 90% माइंड जो है हमारा सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस है ना, और उसमें यही भरा हुआ है, पिछले 63 जन्म में हमने यही किया हुआ है और यही हमारे अंदर भरा हुआ है। 10% मन हमारा कॉन्शियस है, 90% हमारा सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, मतलब वो चेत हमारे कंट्रोल में नहीं है मन, है ना। फरिश्तों का मन जो होता है 100% कॉन्शियस होता है, फरिश्तों का मन किसका कैसा होता है, कॉन्शियस चेतन होता है, और देवताओं का मन भी 100% चेतन होता है। बाबा कहते हैं कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर, इसलिए हमारी कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर से 10% मन पे है, 10% पे भी नहीं है, क्योंकि 90% जो हमारा मन है उसमें क्या भरा हुआ, पाप भरे हुए हैं। जो आधा कल्प से हम देहभान के वश होकर के हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश होते आए, कर्म करते आए हैं, पाप कर्म, वो उसमें भरे हुए हैं। इनके बाल बच्चों के वश, आलस्य अलबेलेपन के वश, चिंता भय ईर्ष्या द्वेष के वश, जो वही भरे हुए हैं, राइट। तो ये हमें क्या करने देते हैं, ये हमें 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 उसमें जो बाबा कहते हैं मुरली पढ़ते ना, आज की मुरली पढ़ी ना, तृप्त आत्मा बनना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, वरदान पढ़ा, स्लोगन पढ़ा, है ना। हमें लगा कि नहीं, हम ये आज सारा दिन सुबह से लेकर रात तक यही करते रहेंगे, टेंशन रखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार इसका मनन जीतन, पर रियल में देखो तो शाम को 10% भी नहीं हो पाता है, 10% भी हमारा नहीं होता है। होता है क्या, चार्ट भरो शाम को, देखो तो कितने कितने परसेंट हमारा मन सचमुच में हम ज्ञान के मनन चिंतन मंथन सिमरण में रहे, बाबा कितने मिनट याद रहा, प्रैक्टिकल देखो आप, होता है नहीं होता ना। तो अभी हमको क्या करने का, तो बाबा आया, बाबा ने सत्य की समझ दी कि बच्चे तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो, तुम अपने आप से बात करने का, चलते फिरते उठते बैठते बात करो, मैं कौन हूं, मेरा कौन है ना, तुम्हारी जो संबंध जो है, जो सारे तुम मेरी संतान हो और तुम्हारे सर्व संबंध मेरे साथ हैं, है ना, सर्व संबंध संपर्क मेरे साथ है, और शिष्य रूपी ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है, और हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है, ठीक है। और मैं शिव बाबा जब परमात्मा अपने लिए कहता है, मैं इसका क्रिएटर भी हूं, डायरेक्टर भी हूं, प्रिंसिपल एक्टर भी हूं, और क्या हूं, सुप्रीम जस्टिस भी हूं, और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार अभी तक मैंने उसको 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दी है, और अभी भी 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा हूं और आगे भी देता रहूंगा, ठीक है। बाबा ने गारंटी ली है, तो अभी तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ कि बुरा हुआ है, अच्छा हुआ है। हमारे सबकॉन्शियस में क्या भरा हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है, क्या हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है। जो भी हमारे संबंध संपर्क थे, पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहने, दोस्त, एम्प्लॉयर, जो भी हमारे आपस संबंध संपर्क, उसमें हम क्या होता है, हमारा क्या होता है, हमारा हमें क्या दिखाई देता है, मान लो हम मैंने दूध एक दूध लेते हैं एक बर्तन में 10 लीटर, उसमें एक मक्खी गिर गई तो क्या दिखाई देता है, मक्खी दिखाई देती है ना, दूध दिखाई नहीं देता है। ऐसे जितने भी हमारे संबंध संपर्क हैं, माता पिता से हैं, भाई बहनों से हैं, दोस्तों से हैं, पति पत्नी से, वो जब भी हमें कुछ गलत व्यवहार करते हैं, गलत बोल देते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, हमें उनके उस व्यवहार में वो गलत बात दिखाई देती है, अच्छी बात दिखाई नहीं देती है, जिसे कहते हैं दोष दृष्टि, है ना। बगले के समान कीड़ा ही दिखाई देता है, उनके अंदर गुण दिखाई नहीं देते, 95% जो गुण है वो दिखाई नहीं देते। तो हम जो है ये हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है, तो हम जो है ये जो हमारा जो हो गया ना, तो हमें क्या है, बार बार वही नेगेटिव ही याद आता है, जब काम क्रोध लोम अहंकार भरा हुआ वो ही याद आता है, बार 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 स्मृति को ऑक्यूपाई करता रहता है, बार बार वही होता रहता है ना। तो अब जो है बाबा ने कहा, बच्चे नहीं, तुम्हारा एक तो आत्मा, तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई, और तुम मेरी संतान हो, तुम्हारे सर संबंध मेरे साथ, और अभी तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है, ठीक है। तो ये अपने अंदर से बहुत क्लियर कर लो, सबको माफ कर दो। सबसे पहले तो अगर आप चाहते हो बाप से हर संबंध की अनुभूति करना, बिना साक्षी हुए हम बाप के साथी नहीं बन सकते हैं, बिना साक्षी हुए हमारे साथ जो कुछ भी दुख दर्द तकलीफें जो आई हैं पास्ट में, भविष्य में, या जो भी अभी वर्तमान में भी हो रहा है, उससे साक्षी होना पड़ेगा, ठीक है। बिना साक्षी हुए ड्रामा में जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है, जब तक वो नहीं होगा तब तक हम साथी नहीं बन, तब तक हम अनुभव नहीं कर सकते, तब तक हम बाप के साथ का अनुभव नहीं कर सकते। दूसरी बात, अब जो हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब बाबा ने मैं शूद्र से ब्राह्मण बना के अपनी गोद में बिठा के मुझे क्या कर रहा है, मुझे सर्व संबंधों से पालना दे रहा है, और प्यार दे रहा है, और हर समय दे रहा है, हर जगह दे रहा है, हर समय दे रहा है, हर जगह। दुनिया वाले संबंध एक या दो संबंध निभा सकते हैं, हर समय नहीं दे सकते, हर जगह नहीं दे सकते, जहां पर है वहीं। अगर आप कहीं दूर चले जाओ, 200 किलोमीटर दूर चले जाओ, तो वहां थोड़ी ना वो केयर कर सकते हैं आपके, कि तो बाप हर समय तुम्हारे साथ, जितनी दूरी यहां से है माउंट आबू मधुबन से, पांडवन से, परम धाम की दूरी, सूक्ष्म धाम की दूरी, उतनी ही आपकी आपके घर से है। मुझे याद है जब हम यहाँ पर जब आते थे ना, जब हम 86 में यहाँ से आना शुरू किया तो यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता था। पांडव उनका बाबा कमरा, बाबा का शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, ओम शांति भवन। तो हम जब सेंटर में मुरली सुनते थे या अमृतवेला घर में करते थे तो हम सूक्ष्म अपने आप ही अमृतवेला करना रोज दिल्ली से यहां पहुंच जाते थे बाबा कमरे में। हमने दिल्ली में इतने साल हम रहे, 10 कितने साल, उसके बाद 9 साल रहे दिल्ली में, तो हमने रोज अमृतवेला बाबा कमरे में किया। 9 साल कैसे किया? अपने कमरे में नहीं किया, अपने ड्राइंग रूम में बैठ के नहीं, फिजिकली ड्राइंग रूम में रहे किंतु सूक्ष्म में हम लोग बाबा कमरे में आके मुरली हमने रोज ओम शांति भवन में सुनी। कैसे? शाम का योग यहां किया, मतलब हमने हर समय यही अनुभव किया। ज्ञान हम कुंज भवन में ठहरते थे, कुंज भवन का कमरा वही उसी कमरे में है ना, वहीं पे हम लोग जैसे दिन रात वहीं दिन में वहीं सो रहे हैं। अपने बेडरूम में वहां सोते थे किंतु वहां महसूस करते वहीं सो रहे है ना, वो लगातार हमने वही अनुभूतियां की है ना? मतलब मधुबन में ही, मधुबन कोई जिस दिन से ज्ञान में आए उसी से मधुबन कोई अनुभव किया। तो कभी ना हमारी मुरली मिस हुई, ना अमृतवेला मिस हुआ, ना कोई अटेंशन मिस हुई। जिसने समझ गया ना बाबा ये सत्य समझ आ गई ना, ये है सत्य, ये ट्रूथ है, ये मुझे करना है और ये बाबा की डायरेक्शन है। तो मतलब ये हमें समझ आनी चाहिए कि हमारा जो सत्य क्या है। तो मैं इसको ABCD कहता हूं, आत्मा, बाबा, कनेक्शन माने संबंध, और डी फॉर ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अब बहुत अच्छा, क्योंकि बाबा ब्राह्मण का मतलब ही क्या है, बाबा की गोद में बैठा हुआ, सदा सूक्ष्म मतलब बाप दादा की गोद में बैठे हुए, वो है ब्राह्मण। और बाबा हर संबंध से मुझे पालना दे रहा है, मुझे राजयोग सिखा के पावन सत्व प्रधान फरिश्ता बना रहा है, अपने साथ वापस घर ले जा रहा है। ऐसा बार 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 अनुभूति होना है ना, और मतलब फिर भविष्य में क्या होगा, पहले बीज देहभान का था तो उसके कारण अब दुख मिल रहे थे, मैंने बबूल बोया था उसके बबूल कांटा मिला मुझे, दुख मिले, और अभी क्या है, अभी मुझे, मैंने क्या बो रहा हूं, अभी मैं फूल बो रहा हूं, फल बो रहा हूं, तो उसका फल क्या होगा, बहुत अच्छा, आज शाम को क्या बहुत अच्छा होगा, परसों, कल सुबह उससे भी अच्छा, परसों उससे भी अच्छा, तरसों उससे भी अच्छा, नहीं। और बाप मेरे साथ है, कुछ प्रॉब्लम आएगी भी देह में या देह के संबंधों में कहीं भी कुछ आएगी तो बाबा बैठा है। पहले 5,000 रुपए देना भी किसको उधार देना बहुत मुश्किल था, कोई मेरे को, मैंने 5,000 उधार लिया था वापस देना मुश्किल था, किंतु अभी अभी मेरे साथ कौन है, पद्मा पद्म पति, अब मेरे को किसका 10 लाख देना भी हो तो इजी है। तो ऐसे अपने आप से ABCD, ये तो ज्ञान का जो है ना, ज्ञान का, इस ज्ञान का सत्य की समझ को चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते अनुभव करते रहो। ये मुरली जो है ना बाबा की, इसको एक एक चीज को अनुभव करते रहो, एक एक संबंध की अनुभूति करते रहो बाबा से। जैसे मैं आप अनुभव के बारे में बताता हूं, बाप से एक एक संबंध की अनुभूति कैसे करनी है। बाबा क्या करता है, देखो शिव बाबा से, शिव बाबा हमें सर्व संबंध की पालना देता है, हमारे ब्रह्मा बाबा से सर्व संबंध नहीं है, किससे है, शिव बाबा से। शिव बाबा ही हमारी मां है, शिव बाबा हमारा बाप है, शिव बाबा ही हमारा टीचर है, शिव बाबा ही हमारा कौन है, सतगुरु है, बंधु है, सखा है, साजन है, सर्जन है, बच्चा है। ये मुख्य 9 संबंध की अनुभूति होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है 9 संबंध मुख्य हमें करने हैं। 9 संबंध की अनुभूति कैसे करनी है, वैसे तो हर संबंध की अनुभूति होनी चाहिए, मैं 9 संबंध की अनुभूति करने का तरीका आपको बताता हूं। शिव और सारे संबंध बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा कराता है, अनुभूति कराता है ना, क्यों, शिव बाबा तो बिंदु है, तो ब्रह्मा बाबा के पास, शिव बाबा के पास क्या चीज नहीं है, हाँ, शिव बाबा के पास शरीर नहीं है, शिव बाबा के पास बुद्धि तो है किंतु संस्कार नहीं है, सॉरी बुद्धि है, संस्कार है, मन नहीं है। शिव बाबा के पास मन है क्या, शिव बाबा सोचता है क्या, ऐसा सोचता है ना शिव बाबा, मैं 10 मिनट में पूरा करता हूं, ठीक है, मैं जी पहुंच सकता, हाँ कोई बात, कोई बात, 7:45 बजे जाना ना डिनर पे, अच्छा कोई बात है, कोई बात, अभी कोई बात, 10 मिनट तो करते हैं। तो शिव बाबा के साथ हमारा क्या सर्व संबंध की अनुभूति, जो जो हमें पता करना है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, वो कैसे प्रैक्टिकल में अनुभव होगा। तो शिव बाबा जो है ब्रह्मा के द्वारा हमको मां की पालना देता है। मां की पालना क्या है, मां की पालना जो है वो है कि मां के रूप में शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमें क्या करता है, माँ की पालना, माँ के रूप में दिव्य जन्म देते ही, दिव्य ब्राह्मण जन्म देते ही हमें क्या करता है, हमें दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट गिफ्ट में दे देता है। बर्थडे की गिफ्ट कौन सी है मैं शिवबाबा की, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट गिफ्ट में देता है। दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट क्या है, जिस बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ है, ABCD भरा हुआ है, जिस बुद्धि में मुरली भरी हुई है, जिस बुद्धि में सत्य की समझ भरी हुई है, वो दिव्य बुद्धि है। राइट, तो हमारी बुद्धि में क्या भर गया अभी कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा इनकी संतान नहीं हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं, मेरे सर्व संबंध उसके साथ है, और ड्रामा में जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा, और जो होने वाला सबसे अच्छा। तो ये जो दिव्य बुद्धि रूप लिफ्ट है, इसमें बटन दबाओ, मुझे बाबा से मिलना है ना, तो बटन दबाते ही हम कहां पहुंच जाते हैं, अब जो उसमें क्या है, मुझे आत्मा, आत्मा और साथ में सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर जो है मेरा है आत्मा के तीन तीन शक्तियां हैं, बुद्धि, मन और संस्कार। तो बुद्धि में दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट के रूप में काम कर रही है। अब मन जो है सूक्ष्म शरीर है, मन क्या है, सूक्ष्म शरीर है। अब जो बुद्धि में जो ज्ञान आया ना, जो समझ आई ना, अब उस मन को क्या करो, मन में चार बातें होती हैं, संकल्प, भावना, वृत्ति और स्मृति। संकल्प, भावना, वृत्ति और स्मृति, है ना। संकल्प, अब जो इस दिव्य, जैसे आज की मुरली थी बाबा ने जो कहा, अब जो बाबा ने जो संकल्प दिए, इसमें जैसे आठ से दस संकल्प बाबा रोज मुरली में देता है, आठ से दस महावाक्य पॉइंट्स होते हैं, तो एक एक महावाक्य को बार बार वो संकल्प को रिवाइज करो। संकल्प को, संकल्प और भावना में क्या फर्क है, जब उस संकल्प को हम बार बार करते हैं, गहराई से करते हैं और संबंध से करते हैं, तो संकल्प भावना का रूप ले लेते हैं। ठीक है, संकल्प और भावना में क्या फर्क है, इंटेंस थॉट्स बिकम इमोशंस, थॉट्स इमोशन बन जाते हैं, है ना। जैसे एक माँ और बच्चे का संकल्प, हम बच्चे हैं, शिव बाबा हमारी माँ है, अरे मेरी माँ ने मेरे को ऐसे कहा है, तो मैं तुम्हें मिलूं तो तुम्हारा पेट भर जाएगा 21 जन्म के लिए, है ना, आत्मा रूपी, आत्मा का बुद्धि रूपी पेट भर जाएगा, तुम्हें कभी किसी से मांगने की दरकार नहीं रहेगी। अब ये संकल्प को हम गहराई से कि कैसे बाबा मुझे भर रहा है, कैसे बाबा मुझे पेट बना, बुद्धि में कैसे ज्ञान भर रहा है, पवित्रता भर रहा है, शांति भर रहा है, प्रेम भर रहा है, खुशी आनंद भर रहा है, इसी संकल्प को और अनुभव करो, गहराई से अनुभव करो। जितना इसको हम अनुभव करते जाएं, क्या हो रहा है मेरा ये संकल्प, बाबा कैसे मेरे को दिन रात कर रहा है, न रात को न दिन की किसी टाइम भी मुझे भर रहा है, तो ऐसा जब तक, तो मेरी भावना क्या हो जाएगी बाबा के प्रति, कैसे हो जाएगी भावना, जैसे माँ मेरी कैसे, और बाबा की तो भावना है ही मेरे प्रति 100%, तो बाबा के वाइब्रेशन मुझे टच करने लगते हैं और मेरे संकल्प बाबा को टच करने। अब क्या है वाइब्रेशन, मेरे वाइब्रेशन बाबा तक पहुंच रहे, बाबा के वाइब्रेशन मेरे तक पहुंच रहे, है ना। तो वाइब्रेशन और दुआएं, वाइब्रेशन परकंपन माने दुआएं, बाबा की दुआएं मुझे कृपा, यही बाबा की कृपा है। जो बाबा से हमने सीखा ना, जो बाबा से सुना ना, उसको बार बार रिवाइज करो, मनन करो, मनन रिवाइज करो, चिंतन करो, गहराई में जाओ, बाबा मुझे तो ऐसा बनना है, बाबा मेरे को तो ऐसा बनना ही है, बाबा मुझे स्वतः प्रधान बनना ही है, मुझे आपका आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार बनना ही है, मुझे सपूत बच्चा बनना ही है ना, मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ चला जाए तो कोई, शरीर भी जाए तो मुझे हर जानी, मुझे आप ही चाहिए बस, है ना। तो ऐसे जब बाबा से हम बात करते हैं, चलते फिरते, चिंतन, मंथन, मंथन माना आप बाबा से लगन लग गई, तो बाबा से हम ऐसे बात करते हैं, बाबा को मेरी बात पहुंच रही, बाबा मेरी बात बाबा को पहुंच रही, बाबा की बात मेरे को पहुंचने लगती, टच होने लगते संकल्प, मंथन आ गया। अब मंथन आ गया, बाबा ने कहा बच्चे तुम देखो ना, तुम मेरे को जो हर संकल्प से, मेरे को, मैं खाली हूं, मुझे हर संकल्प में यूज करो, जो चाहिए तुमको मेरे से मांगो, तुम्हें छाती में दर्द हो रहा है, मैं तुम्हारा कदर ठीक करता, पेट में दर्द हो रहा है मैं ठीक करता हूं, कुछ भी तकलीफ है मैं ठीक कर देता हूं, तुम्हें सिर में दर्द है मालिश कर देता हूं। तो बाबा हर चीज की अनुभूति कराता है ना, तो ऐसे बाबा से अपने मन को क्या करो, भावना, और उसी भावना में जब रहते ना, लंबा कर दो भावना को, तो हमारी वृत्ति परिवर्तन हो जाती है, वृत्ति माना एक सर्कल बन जाता है और उसी में हम घूमते रहते हैं, उससे हमारी दृष्टि बदल जाती है, उससे वायुमंडल बदल जाता है, आसपास हवामंडल बन जाता है, और ये जो हमारा हवामंडल बनने के बाद हमको क्या लगने लगता है, हमारे इंप्रेशन बदल जाते हैं, इंप्रेशन माना जो लगती, जो व्यक्ति मुझे गाली दे रहे थे, इंसल्ट कर रहे थे, वो अच्छे लगने लगते हैं, मेरे पाप कट रहे हैं। ये गाली दे रहा है, मेरे को लगता है मेरे पाप कट रहे हैं, इंसल्ट कर रहा है, मेरे पाप कट रहे हैं, इसने मेरा मकान काबू कर लिया, कोई हर्जा नहीं, मैंने कभी इसके पिछले दिन में मकान काबू किया होगा, इसने मेरा काबू कर लिया। अब संकल्प नहीं चलते, तो संकल्प कम होते जाते और हमारी जो है ना आभा मंडल बड़ा होता जाता, और हमें नए इंप्रेशन, नए हमें अनुभव होने लगते हैं, और बिलीफ, आस्था, बाबा मेरे साथ ही है, सचमुच में बाबा माँ का रूप लगने लगता है, और फिर हम क्या होता है, और हमारे संस्कार बदल जाते, आदतें बदल जाती हैं, और फिर हम ऐसा लगता है जैसे हमारा ये मन पॉजिटिव हो गया ना, लाइट मन में, लाइट जब बुद्धि में लाइट थी, मन में भर गई तो पूरे शरीर में लाइट भर गई, तो लाइट की बॉडी हो गई, अभी लाइट की बॉडी हो गई, अब ये अभी मन बुद्धि संस्कार, मन बुद्धि रूपी लाइट, शरीर फरिश्ता, ये हम सूक्ष्म माना बाप दादा की गोद में पहुंच जाते हैं। अब बाप दादा की गोद का अनुभव होने लगता है, फिर बाबा वहां पर बाप के रूप में, जब बाप की गोद में पहुंच जाते हैं, बाप दादा की गोद में, अब बाबा क्या करता है, बाप के रूप में ज्ञान का तीसरा नेत्र अनुभव कराता है, मतलब मुझे बाबा समझा रहा है कि बच्चे ये कर्म करेगा ना इसका ये फल है, ये कर्म करेगा ना इसका ये फल है, बच्चे इसको बच्चे को देखकर तेरे मन में ये आता है ना इसका ये फल है, इसका देखा है ऐसे, मतलब कर्म अकर्म विकर्म की गति समझा देता है। तीसरा नेत्र का मतलब भी क्या है, कर्मों की गुह्य गति समझा देता है। फिर टीचर के रूप में क्या करता है, त्रिकालदर्शी बना देता है। फिर बाबा त्रिकालदर्शी में ना अपनी गोद में बिठा के दिखाता है, बच्चे तुम्हारा ये जब तू था ना परम धाम में तो देख तू मेरे साथ ऐसे चमक रहा था, है ना, जब सूक्ष्म जब यहाँ पे आया स्वर्ग में आया तो देख तू सरगुण संपन्न था, 16 कला तू देवता स्वरूप तुम्हारे कैसे दिखाता है, तुम ऐसे था, तुम्हें तो ये बनना है ना अभी, सरगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, है ना, ये तुम्हारा ये बच्चे तुम्हारा रूप है, तुम आधा कला तुम 21 जन्म राजा बनने वाले हो। मध्य स्वरूप में दिखाता बच्चे, जब तुम द्वापर में गिरे ना तो तुम्हारे देवताओं में फोटो, तुम्हारे देवताओं में मूर्तियां बन गई मंदिरों में, तुम अखंड दानी, आज भी तुम्हारी मूर्ति के सामने लोग जाते हैं उनको ज्ञान सत्य की समझ आ जाती है, वो अपना देवान भूल जाते हैं, आज भी देवताओं के सामने भग जाके अपना देवान भूल जाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कुछ सब कुछ भूल जाते हैं, अपने को बस एक ये समझते हैं कि मैं तो एक आत्मा हूं, मतलब देह का भान खत्म हो जाता है आज भी, अखंड महादानी माना उनकी बुद्धि में गंदे विचार होते हैं साफ हो जाते हैं, आज भी उनको पवित्रता का दान तुम्हारी मूर्तियों से मिल रहा है, और अखंड वरदानी, अखंड वरदानी माना तुम्हारी आज आधी रात भी तुम्हारे पास कुछ आता है तो मन शांत हो जाता है, उनको रूहानी प्यार की अनुभूति होती है, उनको अतिंद्रिय सुख माना थोड़ी देर के लिए इच्छाएं कम हो जाती हैं, थोड़ा सा आनंद अनुभव हो जाता है, थोड़ी शक्ति आ जाती है, सहन शक्ति आ जाती है, तो ये बाबा हमको इसके रूप में करा रहा है अखंड। और ब्राह्मण स्वरूप में बाबा क्या करता है, बच्चे तुम ब्राह्मण स्वरूप, तुम मेरी गोद में बैठे हो ना, तो मैं तुम्हें अपनी गोद में बैठ के पढ़ा रहा हूं, मुरली सुना रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं, राजयोग सिखा के तुमको पावरफुल बना रहा हूं, और फिर तुम्हें क्या करता हूं, फिर तुम न्यारा प्यारा फरिश्ता बनाकर तुमको अपने साथ घर ले जाऊंगा, फिर सुखधाम में भेजूं, तो ये बाप के टीचर के रूप में। फिर सतगुरु के रूप में बाबा क्या करता है, त्रिलोकी नाथ बना देता है, तीनों लोकों में जाने का मल्टीपल एंट्री वीजा, मतलब कितनी बार जाओ कितनी बार ऊपर नीचे जाओ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो बाप के रूप में त्रिनेत्री, टीचर के रूप में त्रिकालदर्शी माने सदर्शन चक्रधारी, और टीचर और सतगुरु के रूप में त्रिलोकी नाथ बना देता है। और बंधु के रूप में क्या कहता है, वही बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में बात कर रहे हैं हम, बंधु के रूप में बाबा कहता है, बाबा जी तुम्हारे भी जो भी लौकिक जिम्मेवारी है ना सब मेरे को दे दो, अलौकिक जिम्मेवारी है वो भी मुझे दे दो, मैं संभालूंगा, तुम मस्त रहो, तुम खाली हाथ चलो, तुम्हें जो मैं कहता हूं वो करते जाओ, मस्त हो जाओ। और फिर सखा के रूप में तुमसे जो गलत काम हो गए ना, गलतियां सारे दिन में हो गई, पाप कर्म हो गया, कुछ जाने अनजाने हो गया, लिख के मुझे दे दो, दोस्त को सब बातें बता देते ना, तो बाबा से ऐसे हर चीज लिख दो। फिर साजन के रूप में क्या करता है बाबा, साजन सजनी, सखी के रूप में, सखा के रूप में बाबा क्या करता है कि हमको साजन क्या करता है, सजाता है, दैवी गुणों से सजा देता है, सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, अंतर्मुखता, है ना, भेद की वैराग्य वृत्ति, अनासक्त वृत्ति, उपराम वृत्ति, है ना, ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीजों से हमको सजाता रहता है, तो इस तरह से अपने आप को महसूस करो। फिर सज्जन के रूप में जो मेरे अंदर विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बहुत पक्के हैं, चैनल्स बनी पड़ी है हमारे अंदर, किसी देहधारी को देखते ही हमको वो फीलिंग आ जाती है, वो बातें, पुरानी संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, तो बाबा क्या करता है, उसका ऑपरेशन करता रहता है ना। आपके शरीर में बीमारी आती है, कोई तकलीफ होती है, बाबा उसका इलाज कर देता है, कुछ दर्द हो बाबा याद आना चाहिए, कोई देहधारी याद नहीं आना चाहिए। फिर बच्चे के रूप में बाबा कहता है, तन मन धन मुझे दे दो, है ना, आप ये बलिहार चले जाओ मैं इसको ठीक कर दूंगा। तो ऐसे हम नो संबंध का अनुभव करते हैं। जब हम ऐसे एक एक चीज के एक एक संबंध की अनुभूति बाबा से करेंगे ना, तो फिर लगेगा मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। फिर हमें क्या होगा, हमें निरंतर करंट आती रहेगी, और यही योग है। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हम इसी का अनुभव करते जाएं, इसी का अनुभव करते जाएं, एक एक संबंध किसी भी देहधारी की तरफ बुद्धि ना जाए, 1% भी बुद्धि ना जाए। मैं तो कहता हूं मुझे हार्ट की बीमारी हुई थी और मेरे को हार्ट की, मेरी मसल्स बहुत मोटी हो गई थी, मेरे को कहा था आप 1-2 साल में डेथ हो जाएगी आपकी, 2 साल के अंदर ही अंदर डेथ हो जाएगी। यूएस के मेरे फ्रेंड ने बताया था 97 में, फरवरी 97 में, और सचमुच मेरे बीच बीच मुझे हार्ट की धड़कन खराब हो जाती थी, सारी रात में सो नहीं पाता था, दर्द होता था बहुत जोर से, और मेरा इसका इलाज बहुत मुश्किल था, इलाज था ही नहीं दुनिया में, मेरे को ऐसी बीमारी हुई थी हार्ट की। और मैंने मेडिटेशन कर करके बाबा को लेटर लिख लिख के सारे काम करके पाप सब निकाल के, मतलब राजयोग की विधि मैंने तब सीखी, उसके पहले 10 साल में राजयोग किया था, वो विधि थी ना, हम लोग ऐसे कमेंट्री करते, मैं समुच चमकता सितारा हूं, मैं सूक्ष्म वेतन में जा रहा हूं, बाबा की गोद में जा रहा हूं, बाबा मुझे ऐसे कर रहा है, बाबा मेरे को ऐसे कर रहा है, वो कुछ होता तो था नहीं, परिवर्तन होता नहीं था। फिर बाबा को लेटर लिख लिख के चलते फिरते उठते बैठते श्वासो श्वास बाबा की याद का अभ्यास किया, एक एक संबंध की अनुभूति की, हर समय बाबा की अनुभूति। मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए, मुझे दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कोई संबंध नहीं चाहिए, तब जा करके मेरा हार्ट ठीक हो गया। और उसके 20 साल हो गए ना अभी, तो कितने साल हो गए, अभी जिंदा हूं कि मर गया हूं, है ना। तो ये बाबा के साथ का अनुभव है ना, चलते हर समय बाबा की अनुभूति होनी चाहिए। तो जितना हम बाबा के साथ करेंगे ना, फिर हमें बैटरी चार्ज होती रहेगी, तो हम संबंध संपर्क में भी सबको शांति प्यार खुशी बांटते। इनचार्ज का मतलब ही क्या है, जो इन रह के अपने आप को चार्ज करता रहे और सबको शांति प्यार खुशी बांटता रहे, उसे कहते हैं इनचार्ज ना, अदरवाइज तो आउट चार्ज, आंख दिखाने वाले आउट चार्ज होते हैं, है ना। तो इस तरह से बाबा के आप साथ संपर्क, हर संबंध की अनुभूति करो, गहराई से चलते फिरते अनुभूति करो, और एक बाबा दूसरा ना कोई ऐसी स्थिति में टिक जाओ। इसके लिए बस लास्ट में मैं बता दूं, एक तो वो ही कर पाएगा जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। पहली बात, अगर ब्रह्मचर्य में कहीं कमी है तो वो कभी भी ज्ञान का अनुभव नहीं, वो बाबा के साथ संबंध का अनुभूति नहीं कर सकता। दूसरा, जो शुद्ध सात्विक भोजन खाएगा, ये पराठा पकौड़ा समोसा मिठाई राशि भोजन है, ये इसको अवॉइड करना चाहिए, ये खा के आलस पैदा होता है। और तामसिक अचार चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक्स पीना, है ना, ये सब लहसुन प्याज तो खैर आप समझते ही हो, ये सब उत्तेजना पैदा करने वाले भोजन है, बहुत गर्म मसाले लाल मिर्चे खाना इरिटेशन ना। और ये तीसरी बात, सत्संग, एक बाबा और मुरली का संग, बाकी सब छोड़ दो, टीवी अखबार व्हाट्सएप सब छोड़ दो। और चौथा, देवी गुणों की धारणा। तो चार जो जो करेगा ना, उसका अमृत तेला ही पावरफुल होगा, मुरली अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी, सारा दिन बाबा की मुरली अंदर बजती रहेगी। और चौथी बात क्या होगा, वो ही व्यक्ति सोने के पहले लेटर लिख के हर बात बाबा को बता दो, है ना, और याद मुरली पढ़ के याद करके सोचो, तो देखेंगे आपके अंदर शक्ति आ जाएगी। ओके, पर ब्रह्मचर्य, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग माना बाबा और मुरली, सत्य एक ही है, बाबा और मुरली सत्य है, वही करो। और चौथा, देवी गुणों की धारणा करो, ठीक है। तो वो उसको चार संबंध की अनुभूति हो सकती, अदरवाइज नहीं हो सकती। ओम।